तो इसे कहते हैं मानसिक तर्क वितर्क। और इस तरह के ज्ञान के माध्यम से जब हम लोगों को भ्रमित करते हैं तो ये तृणावर्त ऐसी परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शास्त्रों को प्रस्तुत करना है तो यथा रूप केवल मानसिक तर्क वितर्क के माध्यम से हम शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ सकते। तो तृणावर्त ऐसी बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक बार एक राजा थे और उस राजा के महल में एक पंडित रहता था जो राजा को सुंदर सुंदर श्लोक सुनाया करता था। तो एक बार उस पंडित ने राजा को श्लोक सुनाया, शुक्लाम भरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तयेत। तो राजा ने पूछा, क्या अर्थ है भाई, बहुत बड़ा श्लोक सुना दिया, अर्थ तो बताओ। तो उसने कहा, देखो ये वास्तव में किसका वर्णन करता है, गणेश जी का वर्णन करता है। शुक्लाम भरदरम विष्णुम शशिवर्णम, सफेद रंग है इनका, प्रसन्न वदनम ध्याये, जब प्रसन्न होते हैं सर्व विघ्न उपशांते, सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, कुछ आनंद नहीं आया, कुछ अच्छा तात्पर्य बताओ। तब एक और पंडित कूद पड़ा, मुझे लगा मेरे पास इसका और अच्छा तात्पर्य है। राजा बोले, क्या ये गणेश जी के विषय में नहीं बताता, ये श्लोक एक रुपए के सिक्के के बारे में बताता है। राजा बोले, अरे क्या बात कर रहे, वो कैसे। कहले के देखो, शुक्लाम भरद्रम विष्णु शशिवर्णम सफेद, एक रुपए का जो चांदी का सिक्का होता है कितना सफेद होता है। प्रसन्न वदनम जाए, लक्ष्मी जी की पूजा करो तो प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं। और गरीबी तो सबसे बड़ा विघ्न है, सर्व विघ्न उपशांते, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं एक बार लक्ष्मी देवी आ गई तो। राजा ने कहा, क्या बात है, आप कहां छुपे थे इतने दिन, आइए आपको नियुक्त करते हैं। पुराने पंडित को कहा, घर जाओ। पुराना पंडित बेचारा दुखी होकर घर गया। पुत्र ने पूछा, क्या बात है पिताजी, वापस क्यों लौट कर आए। तो पिताजी ने बात सुनाई तो पुत्र ने कहा, मैं देखता हूं किस तरह राजा आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। पुत्र गए राजा को कहने लगे, अरे राजन, शुक्लाम भरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, ये श्लोक न गणेश जी के विषय में है, न एक रुपए के सिक्के के विषय में है, ये वर्णन करता है दही वड़ा का। बोले, क्या बात करते हो। राजा ने कहा, दही वड़ा ये तो मुझे बड़ा प्रिय है, बताओ कैसे कैसे, मैं जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ। देखो, शुक्लाम भरदरम विष्णु शशिवर्णम सफेद, एक रुपए का सिक्का लो, दही वड़ा लो, कौन सा अधिक सफेद है। हाँ, दही वड़ा ज्यादा सफेद है, वही तो मैं कह रहा हूँ। चतुर्भुजम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार प्रकार के समाज में अलग अलग लोग रहते हैं। हो सकता है ब्राह्मण के पास धन हो न हो, वैश्य शूद्र के पास धन हो न हो, लेकिन जहां तक दही वड़े का प्रश्न है, ब्राह्मण दही वड़ा खा सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी दही वड़ा खाकर संतुष्ट हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, और जहां तक धन का प्रश्न उठता है, चाहे कितना भी प्रयास करो, आप धन को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन 10-20-30 दही वड़े खाओ तो अपने आप पेट भर जाता है, सर्व विघ्न उपशांते, पेट की पूजा करो, दही वड़े से अपने आप पेट संतुष्ट हो जाएगा। ये अर्थ है इस श्लोक का। राजा ने कहा, जय हो आपकी, आपने तो ऐसा तात्पर्य बताया जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, मैं आपको नियुक्त करता हूँ पंडित के रूप में। बच्चे ने कहा, अरे मूर्ख राजन, मैं तो तुमको केवल ये सबक सिखाने आया था कि कोई चाहे कोई भी श्लोक सुनाए उसको तुरंत स्वीकार मत कर लो, क्योंकि श्लोकों को सुनाना भी है तो केवल प्रामाणिक परंपरा में, और जब तक परंपरा में ये ज्ञान नहीं आता तो केवल मानसिक तर्क वितर्क से हम केवल पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब तृणावर्त आए, उन्होंने लोगों के आंखों में जो धूल झोंकी, उसी प्रकार से गलत तात्पर्य और गलत अनुवाद से लोगों की आंखों में धूल झोंका जा सकता है, और ज्ञान के बदले अज्ञान के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो कहने लगे कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। भागवत ज्ञान प्राप्त करना है तो परंपरा के माध्यम से, नहीं तो अंग्रेजी में कहावत है डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, जितने अलग अलग लोग हैं उनके मनोभावना के अनुसार उतने ही श्लोक तैयार किए जा सकते हैं उनकी संतुष्टि के लिए। तो विशेष बात है कि किस तरह आचार्यों के संप्रदाय में यह ज्ञान आ रहा है। तो तृणावर्त का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ रोज क्रीड़ा किया करते और जंगल में जाकर 9 लाख गायों को वो संभालते थे। तो प्रश्न उठता है कि भगवान अकेले 9 लाख गायों को कैसे संभाल सकते हैं। सोचिए 9 लाख गायों को कोई लेके जाए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान भगवान क्यों है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है, 9 लाख गायों को लेकर जाकर दिखाओ। शायद 9 लाख गाय लेके जाओगे लेकिन 9 लाख गाय लौटा के नहीं लाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी वेणु से 9 लाख गायों को आकर्षित करके उनके ऊपर नियंत्रण रखते थे, सभी संतुष्ट रहते, दिन भर चरते रहते और भगवान अपने सभी ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे। तो हुआ यूं कि एक बार जब भगवान गोपाल ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो एक दूसरा राक्षस आया जिसका नाम था वत्सासुर। वत्सासुर ने एक छोटे बछड़े का रूप धारण किया, क्योंकि वत्सासुर ने देखा कि कृष्ण तो गोपाल हैं, गायों की हत्या नहीं करते, तो वत्स का रूप धारण करूंगा तो गोपाल मुझ पर प्रभावित हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि राक्षस है। तो एक छोटे से गाय के रूप में आए, लेकिन गोपाल समझ गए कि ये तो असुर आया है हमारे बीच। तो गोपाल बलराम जी को इशारा करने लगे कि बलराम जी चलिए एक्शन का समय आ गया है, हमारे बीच एक राक्षस आया है और इसका सही प्रकार से उपाय करना है। तो खेल खेल में धीरे से भगवान वत्सासुर को पता नहीं लगने दिए कि उन्होंने उन्हें देख लिया है। धीरे से वत्सासुर के पीछे गए, पीछे जाकर वत्सासुर के पिछले 2 पैरों को पकड़ा और पकड़कर एक झटके में अपने सर के ऊपर यूं घुमाया कि वत्सासुर ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए, उठाकर सीधा ऊपर एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। वहां सुंदर एक वृक्ष था जिसमें सुंदर सुंदर फल थे और वत्सासुर का जैसा शरीर ऊपर गिरा, ऊपर के सारे फल नीचे गिरे। आचार्यगण बताते हैं इसीलिए भगवान ने घुमाकर ऊपर फेंका जिससे एक तीर से 2 निशाने लग सकें, वत्सासुर की हत्या और उसके मृत देह का सदुपयोग हो जिससे हम नीचे गिरे हुए फल का आस्वादन कर सकें। तो सारे ग्वाल बाल भगवान के गोपाल की इस लीला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सब कहने लगे कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान इतने छोटी सी उम्र में ही ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े राक्षसों का वध करते हैं। और वत्सासुर किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं? वत्सासुर प्रतिनिधित्व करते हैं लोभ का, जो कि गलत संग में आकर प्राप्त होता है। ऐसे लोभ का प्रतिनिधित्व करते हैं वत्सासुर। तो कहा जाता है वत्सासुर आए थे एक छोटे से नन्हे से वत्स के रूप में, गाय के बछड़े के रूप में। और गाय का बछड़ा कितना आकर्षक होता है, और उस उम्र में विशेष रूप से कोई गंभीरता नहीं होती। छोटे बच्चे और गाय के बछड़े हमेशा विचलित रहते हैं, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। तो जैसे बचपन में कोई व्यक्ति विशेष रूप से गंभीरता धारण नहीं कर सकता और उसका मन विचलित रहता है, और जैसे छोटा बच्चा नए नए चीजों को प्राप्त करने के लिए लोभी होता है, छोटा बच्चा हमेशा माता पिता से कहते रहता है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, उसी तरह वत्सासुर जो कि छोटे बछड़े के रूप में आए थे, हमारे हृदय में नए नए वस्तुओं को प्राप्त करने के लोभ का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक बार दो बकरी आपस में युद्ध कर रहे थे, बकरियों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। तो एक दिशा से एक बकरी आ रहा था, दूसरे दिशा से दूसरी बकरी, पूरी तेजी से आते और सीधा आकर धाम ऐसे टकराते, और दोनों के सर जब टकराते तो उनके सर से खून बहता, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता। फिर वो पीछे लौटते, पीछे लौटकर फिर नई शक्ति के साथ फिर भाग के आते, फिर उनके सर टकराते, सींग टकराते, और फिर खून नीचे गिरता, फिर वो वापस लौटते। इस तरह बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। पास में एक लोमड़ी बैठकर देख रहा था। लोमड़ी ने सोचा, अरे ये खून नीचे गिर रहा है, ये तो यूं ही जा रहा है, चलो इसे इसका पान करें। तो लोमड़ी बीच में आया और जैसे टकराने के बाद दो बकरी पीछे मुड़ते, वो बीच में आकर उस रक्त को चाट लेता और फिर पीछे हट जाता, फिर देखता रहता। फिर वो आकर आक्रमण करते, फिर रक्त गिरता, फिर लोमड़ी जाता, फिर चाटता, फिर वो पीछे हट जाता। लेकिन एक बार रक्त को चाटते चाटते वो इतना मग्न हो गया लोभ के वश में कि वो पीछे हटना भूल गया। दोनों बकरी दोनों दिशाओं से आए और दोनों ने जब अपने सर का एक दूसरे पर वार किया, बीच में लोमड़ी के सर का भी स्वाहा हो गया। तो पंचतंत्र में कथा आती है जिसका तात्पर्य यह है कि अधिक लोभ करेंगे और आवश्यकता से अधिक लोभ करेंगे तो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो इस लोभ को नियंत्रित करना चाहिए। जितना हमारे पास हो उतने से जो संतुष्ट रहे, समझना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनम कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतम त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, आप काम क्रोध और लोभ इन तीनों बातों को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दो। उसके पश्चात गोपाल अपने सभी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के निकट गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा राक्षस एक बगुले के रूप में वहां पर बैठा था। उसका नाम था बकासुर। कंस ने भेजा था बकासुर को, और बकासुर अपने दोनों चोंच को खोलकर वहां लेटा था। जैसे ही गोपाल को आते हुए देखा, बकासुर ने अपने मुंह को खोला और गोपाल को निगल गए। गोपाल बकासुर के गले में जाकर अटक गए, और गले में जाकर गोपाल धीरे धीरे अपने शरीर के तापमान को इस तरह बढ़ाने लगे कि बकासुर सहन नहीं कर सका, और तुरंत उन्होंने भगवान को अपने मुंह के बाहर फेंक दिया, थूक दिया। भगवान बाहर निकले, बकासुर के निकट आए और बकासुर के दोनों चोंचों को इस तरह पकड़ा और दोनों चोंचों को चीर दिया और बकासुर की हत्या कर दी। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो इसे देखकर सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हुए। ऊपर से जितने देवता थे सब फूलों की वर्षा करने लगे और अलग अलग प्रकार से नृत्य होने लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान का राक्षस के ऊपर विजय हुआ था। तो कंस हर प्रकार से प्रयास कर रहा था कि किस तरह गोपाल को हम परेशान करें। तो बकासुर किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं? बकासुर पाखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाखंड अर्थात हम हैं कुछ, लेकिन दुनिया के सामने बनते हैं कुछ और। हृदय में इच्छाएं हैं कुछ, लेकिन वचन के माध्यम से और अपने कार्यों के माध्यम से हम कुछ और व्यक्त करते हैं। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी और हिंदी में कहते हैं पाखंड। तो भक्ति मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना हो तो भक्त को बहुत ही सरल हृदय होना चाहिए। सरल हृदय का भक्त ही बहुत शीघ्र भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो भक्ति में हम सभी अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम इतने प्रगतिशील हो गए कि अब हम सभी दोषों से मुक्त हैं। नहीं, जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार बहुत बढ़ जाता है तब वो दूसरों के सामने अपने दोषों को व्यक्त नहीं करना चाहता और भक्ति मार्ग में पतन होते हुए भी वो अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करता है, क्योंकि इसे उसे लगता है कि यदि मैं अपने दोषों का व्यक्तिकरण करूं तो लोग क्या कहेंगे, सारे भक्तों की सभा में मेरी नाक कट जाएगी क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं कितना महान भक्त हूं, मैंने अब तक सबके सामने एक महान भक्त का रूप धारण किया है, अब जब अनेक समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं उसे व्यक्त करना बहुत कठिन हो रहा है। तो पाखंड तब हमारी आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है। तो एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, बंगाल की कथा है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उस ब्राह्मण को अचानक बहुत भूख लगी और भूख लगी तो उसने बाजार से कुछ कुरमुरा खरीदा। कुरमुरा जानते हैं, बिल्कुल लाइट होता है, चावल के समान होता है। तो कुरमुरा उसने अपने हाथ में लिया लेकिन इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि अब कौन भगवान को ऑफर वगैरह करे, चुपचाप खा जाओ, भगवान को तो रोज भोग लगाते हैं, इतनी भूख लगी है, समय नहीं है कि यहां बैठकर हम भगवान को भोग भोग लगाएं, कोई देख भी नहीं रहा है। चुपचाप उन्होंने अंदर से कुरमुरा लिया और मुंह में लगाकर खाने ही वाले थे कि अचानक हवा का एक भयंकर झोंका आया और मुट्ठी भर में जितना भी कुरमुरा था हवा में उड़ने लगा। वो जोर से अपने हाथ को ऐसा किया और कहने लगा, ओम गोविंदाय नमः, कि जो कुरमुरा उड़ गया हे गोविंद आपके लिए था, वास्तव में आप खाइए उसे। तो जो स्वयं भोग न कर पाए तो भगवान को चढ़ा दिया, भगवान अभी आप ही खाओ, मैं तो नहीं खा सकता। तो इसे कहते हैं पाखंड। तो बकासुर ऐसे पाखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना हो तो इससे हमें बचना है। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो इसी बात पर हम एक और भजन गाएंगे। तो मैं श्रीनिवास प्रभु से निवेदन करूंगा कि कृष्ण भगवान की लीलाओं के आधार पर ये दूसरा भजन गाएं। ये श्रीनाथ जी प्रभु की आइडिया थी कि बीच बीच में इस तरह आज कृष्ण लीला है तो भजन गाएंगे। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद का विशेष स्थान है, और जब दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन होता है तो उनमें विशेष आनंद आता है। तो हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत के बाकी सभी स्कंदों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान हो, और तब धीरे धीरे करके हम दशम स्कंद के लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। खैर, अब तो केवल दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करके हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करेंगे, और धीरे धीरे श्रवण करके जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा तब हम वास्तव में इन लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचा विषय है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, और इसके लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक योग्यता चाहिए इसके ऊपर प्रवचन करने, कथा करने। लेकिन सेवा के तौर पर और अपनी शुद्धिकरण के लिए हम दशम स्कंद पर कथा कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर प्रकार से लीलाओं का वर्णन किया, सब प्रभुपाद जी की कृपा है, सब गुरु महाराज की कृपा है, जिससे इन कथाओं के वर्णन से हम अपना शुद्धिकरण कर सकें। जैसा कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यद कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनकारणम्। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर यदि कथा करनी हो तो व्यक्ति को हृदय से 100% शुद्ध होना चाहिए, तब उसका अधिकार है। लेकिन यहां पर हम कथा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो सके। तो आगे वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान गोपाल अपने सभी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यमुना के तट पर सुबह सुबह एक दिन निकल पड़े। अपने हाथ में टिफिन की जो छोटी सी पोटली थी वो ले लिए और अपने हाथ में लाठी ले लिए और बजाने के लिए जो बिगुल था वो ले लिए और सबको बुलाकर साथ साथ भागने लगे जमुना के किनारे भागते हुए। और रास्ते में उन्होंने एक ग्वाल बाल के प्रसाद की पोटली चुरा ली और उसे उठाकर दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दी। तो बेचारा जिसके हाथ से प्रसाद निकल गया वो भागा भागा गया दूसरे के पास अपनी पोटली लेने, तब तक उसने उठाकर वो तीसरे के हाथ में दे दी। जब वो उसके पास गया तो प्रसाद की पोटली उठाकर चौथे के हाथ में दे दी। इस तरह एक गोप को बैठकर सब घुमा रहे थे। तब अंततः वो रोने लगा, जिसके हाथ से प्रसाद निकल गया वो रोने लगा। तब भगवान को दया आई, गोपाल ने कहा लौटा दो इसको। तो हमको लगेगा ये तो कोई साधारण बच्चा इस तरह खेलता है स्कूल वगैरह में, तो ये क्या भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है? तो ये समझना बहुत कठिन है कि गोपाल अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ कैसी लीलाएं करते थे, ये समझना बहुत कठिन है। और कभी वर्णन आता है, यदि दूरम गते कृष्ण वन शोभे क्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे। कभी सब ग्वाल बाल निश्चय करते कि हम अभी एक रेस लगाएंगे। वो कैसे? गोपाल यदि दूरम गते कृष्ण वन शोभे क्षणायतम, गोपाल वन में गए हैं वन की शोभा को देखने के लिए, तो अब यहां से लेकर हम गोपाल तक रेस लगाएंगे। अहम पूर्वम यदि संस्पृश्य रे मेरे, और हम सभी के बीच किस प्रकार की भावना होगी, कौन पहले गोपाल को जाकर छुएगा, जो पहले गोपाल को छूता है वो जीत गया, उसकी जीत होगी। लेकिन ये भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होड़ नहीं था, क्योंकि जब ग्वाल बाल तेजी से भागते तो उनके हृदय में यह भावना होती कि मैं इतनी तेजी से भागूं कि मुझे गोपाल के निकट तेजी से भागता हुआ देखकर मेरा दूसरा ग्वाल बाल मित्र को प्रोत्साहन मिलेगा और वो पूरी शक्ति के साथ भागेगा कि चलो गोपाल को पकड़ते हैं, और उसकी शक्ति को देखकर तीसरा सोचेगा मैं और तेजी से भागूं, तो मैं पूरी शक्ति से इसलिए भागूं जिससे दूसरों को भागने में प्रोत्साहन मिले। इसे कहते हैं वैकुंठ का वातावरण, वृंदावन का वातावरण। अर्थात यदि रेस लग भी रही है तो उसके अंदर भावना ये नहीं है कि मैं आपसे अच्छा हूं, मैं आपसे अधिक योग्य हूं, मेरे अंदर अधिक गुण है, नहीं। मैं अपनी सेवा इतनी उत्साह से करूं, अपनी सारी शक्ति उस सेवा में लगा दूं, तो मुझे इतना उत्साहित देखकर दूसरा भक्त 100% ऊर्जा उस सेवा में लगाए और अंततः वो मुझसे और अधिक अच्छी सेवा कर पाए और गुरु और कृष्ण को और अधिक प्रसन्न कर पाए। ये भावना होती है भक्त के हृदय में। लेकिन जो भौतिक बुद्धि होती है वो कैसे? जैसे समुद्र मंथन के अंत में जब अमृत हाथ में आया तो तुरंत सारे दानवों ने उस अमृत के मटके को अपने हाथ में लिया और आपस में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। मितः कलिर अहुत्तेषाम न तरसे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभो। वहां भी यही झगड़ा चल रहा था, मैं पहले अहम पूर्वम। लेकिन भावना क्या थी? नत्वम, तुम चलो पीछे लाइन में आओ, पहले मैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मेहनत मैंने किया है, परिश्रम मैंने अधिक किया है, मैं अधिक योग्य हूं, अधिक गुणवान हूं, इसीलिए इस अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। इसे कहते हैं भौतिक बुद्धि। तो आध्यात्मिक बुद्धि और भौतिक बुद्धि में यही अंतर है। तो यहां पर सारे ग्वाल बाल अपने सारा खेल कृष्ण के चारों ओर केंद्रित करते थे। खेलते खेलते अचानक उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे एक बहुत विशाल सर्प लेटा हुआ है। उनको लगा कि ये सर्प है या हमारे खेल के लिए कोई फिसल पट्टी है, क्योंकि इतना विशाल था उसका मुंह, इस तरह चौड़ा खोल के रखा था। तो ग्वाल बालों ने सोचा, हो सकता है वो खेल का कोई साधन हो सकता है वो कोई सर्प हो, लेकिन हमें चिंता की क्या आवश्यकता। अभी तो कृष्ण ने बकासुर का वध किया है और उसके पहले कितने ही राक्षसों का वध किया है, अगर ये अंततः राक्षस भी निकला तो गोपाल है ना। ऐसा कहके सब अघासुर के मुंह में घुस गए और गोपाल ने अपनी आंखों के सामने देखा कि सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। गोपाल बहुत चिंतित हुए, भागे भागे गए और सीधा अघासुर के मुंह में चले गए और अघासुर के मुंह में जाकर उन्होंने अंदर अपने शरीर का विस्तार करना आरंभ किया। और जैसे गोपाल जी का शरीर बढ़ने लगा, अघासुर का पेट फटने लगा और अंततः अघासुर गोपाल के इस बढ़ते हुए शरीर को अपने पेट के अंदर धारण नहीं कर सका और अघासुर का पेट फट गया और उसकी आत्मा पूरी तरह बाहर निकल गई और सबके आंखों के सामने अघासुर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चली गई। बोलिए कृष्ण भगवान की। बहुत ही आसानी से उन्होंने अघासुर को इस तरह मार दिया। सारे ग्वाल बाल जो अंदर थे सभी कृष्ण को धन्यवाद देने लगे, कहने लगे, गोपाल आप नहीं होते तो आज हमारा क्या होता, लेकिन हमको विश्वास था कि आप आएंगे इसीलिए हम चले गए। तो कृष्ण कभी अपने भक्तों को विनाश के मार्ग पर नहीं देख सकते, हर परिस्थिति में वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतियानि हि नमे भक्तः प्रणश्यति। और वृंदावन के सभी ग्वाल बालों के हृदय में बस यही इच्छा होती है कि कैसे कृष्ण को गोपाल को संतुष्ट करें। तो अघासुर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अघासुर दूसरों के प्रति द्वेष और बदले की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अघासुर बकासुर और पूतना के भाई थे और अघासुर के मन में ये भावना थी कि मैं कृष्ण को मारकर नहीं, मैं सारे ग्वाल बालों को मारकर कृष्ण के हृदय में ऐसा विरह पैदा करूंगा कि कृष्ण भी अंततः नष्ट हो जाएगा और जब कृष्ण मर जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके पश्चात कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद मैं अपने भाई और बहन की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। इसे कहते हैं बदले की आग। तो जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है तो हो सकता है कि हृदय में वैर भावना हो कुछ लोगों के प्रति, लेकिन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से ये हमें रोकता है, क्योंकि भक्त अपने हृदय में किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखता। एक बार हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि प्रत्येक आत्मा भगवान का अंश ही तो है, इसीलिए किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वैर भावना हमारी मानसिक ऊर्जा को अन्य दिशा में ले जाएगी और भगवान के विषय में हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अघासुर बहुत अधिक द्वेष और वैर की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने अपने जीवन में और पिछले जन्मों में 84 लाख योनियों में कितने ही पाप कर्म किए हैं, इसका कोई हिसाब है? इसका कोई हिसाब नहीं। और हम भगवान के अर्च विग्रह के सामने आकर अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे पापों से मुक्त करो, पाप के फलों से मुक्त करो। हम किस मुंह से भगवान से क्षमा मांग सकते हैं जब तक हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं? भगवान हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ तुम क्षमा के पात्र के योग्य हो कि नहीं, उचित पात्र हो कि नहीं, बताओ आपके अंदर क्या योग्यता है, मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूं? क्या तुम दूसरों को क्षमा कर रहे हो? यदि मैं दूसरों की गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं तो भगवान के समक्ष आकर मैं कैसे भगवान से मांग कर सकता हूं कि भगवान मेरी गलतियों को क्षमा करो? तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के 64 गुणों में एक गुण है क्षमाशील। भगवान हमारी प्रत्येक गलती, प्रत्येक त्रुटि को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, और इसका सबसे उत्तम उदाहरण है पूतना का वध। उद्धव जी क्या कहते हैं? अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघाम सयाप्यायदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं। अहो बकियम स्तनकालकूटम, पूतना राक्षसी गोपाल की हत्या करने आई थी, उसके मन में गोपाल के प्रति भक्ति का कोई भाव नहीं था, केवल जीवन में एक ही लक्ष्य था गोपाल की हत्या। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय के वैर भाव को न देखते हुए पूतना के किस गुण को स्वीकार किया? भगवान ने देखा कि पूतना भले ही विष स्तनों पर लगा कर आई है लेकिन कम से कम मेरा स्तनपान कराना चाहती है, वो मेरी मां के समान है। और भगवान ने पूतना के केवल उस भाव को स्वीकार किया। लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत, और पूतना को वो स्थान दे दिया जो माता यशोदा को प्राप्त है। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, जितने भी क्षमाशील और दयालु पुरुष इस भौतिक जगत में हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण के इस उदार भाव के साथ किसी प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण हमें अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि देखो, मैं सभी दोषों को भूलकर दूसरों के दुर्गुणों को सहन कर उनके सारी गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भक्तों, आप भी अपने जीवन में इस क्षमा भावना को अपनाओ, क्योंकि क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्रह्मी सौरी यथा प्रभा क्षमयाश भगवान तुष्यन्ते हरीश्वर। क्षमा एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकते हैं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर, तो भक्त का सबसे मुख्य गुण होता है क्षमा, इसीलिए वो हृदय में कोई वैर भाव नहीं रखता। और यहां अघासुर ऐसे वैर भाव और द्वेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि हमें इस प्रकार के वैर भाव को हृदय में नहीं रखना चाहिए, इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होती। तो आगे वर्णन आता है कि कृष्ण और बलराम एक बार तालवन में गए, तो तालवन में सुंदर फलों का सुगंध ग्वाल बालों ने लिया, तो कृष्ण बलराम को कहने लगे, कृष्ण बलराम हमें भूख लगी है, हमारा मन आकर्षित हो रहा है इन फलों को खाने के लिए, लेकिन एक समस्या है कि इस ताल वन में एक बहुत भयंकर राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, तो कृपा करके आप हमें ये ताल वन के सुंदर स्वादिष्ट ताल फल खिलाओ। प्रभुपाद लिखते हैं कि ताल फल कैसे होते हैं, खट्टा और मीठा दोनों, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और ग्वाल बालों को ये ताल फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत विशेष होते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम से ऐसे आग्रह किया तो बलराम जी ने कहा कि चलो, मेरे लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है, और पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा था ताल का, उसे हिलाने लगे, और बलराम जैसे वृक्ष को हिलाने लगे सारे फल नीचे गिरने लगे, लेकिन उसकी ध्वनि को सुनकर धेनुकासुर वहां आया भागता हुआ। धेनुकासुर कहने लगा, कौन है वो जो मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति के बिना मेरे इस बागवान में आया है? जानते नहीं कि ये सारे फल कंस के लिए हैं और मैं इसका स्वामी हूं? तो बलराम जी ने देखा कि धेनुकासुर है, कोई बहुत बड़े गधे के रूप में आया था, गर्धब असुर भी कहते हैं उसे, गर्धब राक्षस, अर्थात जिस राक्षस ने गधे का रूप धारण किया। बलराम जी के ऊपर वो आक्रमण करने लगा, बलराम जी के ऊपर वो अपने पैरों से आक्रमण कर रहा था, बलराम जी ने उसे उठाकर पीछे फेंका। फिर वो आया और दुलत्ती मारने लगा बलराम जी को। बलराम जी ने कहा, ये तो बड़ा बदतमीज है, एक बार उठाकर फेंका फिर भी मानता नहीं, तो चलो इनका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा कहकर बलराम जी उनके पिछले दो पैरों को पकड़े और फिर सर के ऊपर घुमाने लगे और उठाकर सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर फेंके। तालवन में जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसके ऊपर जाकर धेनुकासुर गिरे, और जैसे ही धेनुकासुर उस पेड़ पर गिरे, वो पेड़ गिरा नीचे और उनके बगल में जो छोटे पेड़ थे वो नीचे गिरा, और जब ये पेड़ छोटे पेड़ों पर गिरा वो पेड़ गिरे। इस तरह देखते ही देखते बलराम जी के एक बार फेंकने से उस ताल वन में जितने भी वृक्ष थे सारे नीचे धड़ाम से गिर गए और धेनुकासुर वहां पर लहूलुहान हो गया, उसके मुंह से खून रक्तपात होने लगा, और बलराम जी और कृष्ण भगवान वहां पर खड़े होकर धेनुकासुर की उस अवस्था को देख रहे थे। सारे ग्वाल बाल कह रहे थे, जय हो कृष्ण भगवान की, बलराम जी की। तो वास्तव में कृष्ण बलराम साथ साथ लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि मैंने काफी सारे राक्षसों को मार दिया है, बलराम जी अभी आपकी बारी है, आप भी कुछ हाथ साफ करो। इसीलिए धेनुकासुर जब आया तब भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि चलिए आप भी कुछ आनंद लीजिए। तो इस तरह धेनुकासुर की जब हत्या हुई तो धेनुकासुर के जितने संगी थे वो भी सब गधे थे, राक्षस थे लेकिन गधों के रूप में थे, और पूरी शक्ति के साथ कृष्ण बलराम पर आक्रमण करने लगे। और कहा जाता है कि वो साधारण गधे नहीं थे, लाल पीले नीले जामनी अलग अलग रंग के वो गधे थे। तो प्रतीत हो रहा था मानो यहां पर होली मची हो, सब लोग अलग अलग रंगों से सुशोभित थे, लेकिन बलराम जी और कृष्ण भगवान ने उसी तरह उसी एक्शन से सभी गधों को उठाया और ऊपर फेंका और सभी की हत्या हो गई। तो कृष्ण बलराम के सामने कोई नहीं टिक सकता, गधे कहां से टिकेंगे। तो कहा जाता है कि कृष्ण बलराम इस लीला के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो राक्षस व्यक्ति सोचता है कि ये सारी संपत्ति मैंने अर्जित की है, ये मेरी है, लेकिन भगवान का भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि सारी संपत्ति भगवान कृष्ण की है और वो मेरे नियंत्रण में है, कुछ समय के लिए मेरे देख रेख में है, जिससे मैं भगवान की अच्छी सेवा कर सकूं। तो धेनुकासुर को लग रहा था कि ये सारा वन मेरा है, ये धेनुकासुर का बहुत बड़ा भ्रम था। और ध्यान रहे कि भक्ति मार्ग में जब हम प्रगति करते हैं तो ये भावना हमारी प्रगति में बहुत बड़ा बाधक बन सकती है। भक्ति के पहले तो हो सकता है हम इस प्रकार के भ्रम में हो, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी हमारे मन में विचार उठ सकता है कि ये स्थान मेरा है, ये सेवा मेरी है, ये शिष्य और ये लोग ये मेरे हैं, मेरे नियंत्रण में है, और मेरे अनुमति के बिना इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं धेनुकासुर की चेतना, अर्थात संपूर्ण रूप से स्वामी बनने की इच्छा। तो भौतिक जगत में जितने भी लोग भोग कर रहे हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि हम ही भोग करेंगे भगवान की सारी संपत्ति को, भगवान कृष्ण को कुछ भी अर्पित करने की क्या आवश्यकता है। जैसे धेनुकासुर कृष्ण और बलराम को दो फल भी देने के लिए तरस रहे थे, दो फल भी देने के लिए घबरा रहे थे, उन्हें लग रहा था यदि मैं ये फल इनको दे दूंगा तो कंस मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा, कंस को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मन। तो इस स्वामित्व की भावना को मिटाने के लिए भगवान ने कितनी अच्छी योजना बनाई, एक फल एक फूल। देखिए इस श्लोक में कई विशेष बातें हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये नहीं कह रहे हैं पत्राणी पुष्पानी फलानी, बहुत सारे फल बहुत सारे पत्ते बहुत सारे फूल, कोई चांस नहीं लेना चाहते भगवान, क्योंकि कोई आके कहेगा मेरे पास तो बहुत सारे फल नहीं है बहुत सारे फूल नहीं है, भगवान कह रहे चलो भाई कहीं से एक पत्ता तो तोड़ लाओ, एक फल तो कहीं से लेके आओ, एक फूल कहीं से लेके आओ, वो भी मैं स्वीकार करूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो दो बार इस श्लोक में कहते हैं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम। तो इस श्लोक में मुख्य बात क्या है, फल फूल इत्यादि नहीं, भक्ति। भक्ति भाव के साथ यदि हम भगवान को कुछ अर्पित करें तो भगवान बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति थे, गृहस्थ थे, काफी समय पहले की बात है, जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति में ये प्रथा थी कि भोजन करने के पहले कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर अतिथियों को जोर से बुलाएगा, रास्ते में कोई भी चल रहा हो तो पहले जोर से घोषणा करेगा कि भोजन तैयार है, प्रसाद वितरण होने वाला है, जो लोग प्रसाद लेना चाहें कृपा करके हमारे घर में आ जाएं। तो जो भी रास्ते पर चलते थे कोई भी आ सकता था प्रसाद ग्रहण करने। तो ऐसी प्रथा थी वैदिक सभ्यता संस्कृति में, उनको परोसने के बाद फिर वो व्यक्ति खुद अपना भोजन ग्रहण करेगा। आज के दिन तो बम्बई में बहुत खतरनाक है ऐसा करना, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसे करने की। तो एक दिन एक व्यक्ति बहुत देर के बाद आया, बहुत देर तक वो पुकार रहा था कोई आ जाओ कोई आ जाओ, कोई आ ही नहीं रहा था, बड़े परेशान थे, बड़ा अशुभ दिन है कि बिना किसी को भोजन परोसे मुझे खाना पड़ेगा, परेशान थे। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां आए, बहुत प्रसन्न हुए देखकर, अरे कोई तो आया, और उनको अंदर बुलाया और बिठाया और भोजन देने लगे परोसने लगे। और जैसा वो व्यक्ति बैठकर भोजन करने लगा, जो परोस रहे थे जो गृहस्थ थे वो कहने लगे कि देखिए भगवान की कितनी कृपा है, कृष्ण कितने महान हैं कि मैं विचलित था परेशान था लेकिन आपको भेज दिया जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, भगवान ने देखिए कितने अच्छी प्रकार से व्यवस्था की है कि मेरे घर में धन है और मेरे घर में चावल है जिससे मैं अतिथियों का सत्कार कर सकता हूं। उसने सोचा कि भोजन करते समय कुछ भगवान की स्तुति करता हूं तो इसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन भोजन करते करते अचानक अतिथि जोर से चिल्ला उठा, बोलने लगा क्या भगवान भगवान लगाए रखे हो, क्या कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, अरे मेहनत करोगे तो धन मिलेगा, यदि कोई परिश्रम करेगा खेतों में तो अन्न आएगा, तो इसमें भगवान बीच में कहां से आ गए। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने थोड़ी तुमको कहा था कि मुझे खिलाओ, आपने बुलाया इसलिए मैं आया, तो बीच में भगवान वगैरह को मत लेके आओ, मैं स्वामी हूं और जो मेरी संपत्ति वो मेरी है, तुम इस भ्रम से दूर हो जाओ। तो उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ कि मैंने भगवान का प्रसाद आज ऐसे व्यक्ति को खिलाया जो कृष्ण की निंदा कर रहा है, कृष्ण का प्रसाद खा रहा है और कृष्ण की निंदा कर रहा है, ये मैंने क्या अपराध किया। और उसको भेजने के बाद ये व्यक्ति बैठकर बहुत ही दुखी थे, अपने सर को हाथ में लिए थे और सोच रहे थे आज मेरे से इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। मैंने एक अभक्त को, एक इस प्रकार नास्तिक को भोजन खिला दिया। ऐसे दुखी बैठे ही थे कि अचानक उनके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, बेटे इतने दुखी क्यों हो? बोले, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। आज मैंने एक नास्तिक को, एक पाषंडी को जो आपकी निंदा कर रहा है, उसे अन्न खिलाया, इसीलिए बहुत दुखी हो। तो भगवान ने कहा, अरे बेटे जरा सोचो, सनातन काल से मैं कितने ही नास्तिकों और अविश्वासियों को अन्न देता रहा हूं, सोचो मेरे हृदय की हालत क्या होगी। एक नास्तिक को, एक अविश्वासी को तुमने इस तरह भोजन किया, इतने दुखी हो, तो मेरा क्या होगा? सनातन काल से जितने भी राक्षस मुझसे युद्ध करते रहे हैं, वो भोजन कहां से करते हैं? मैं ही तो उनको प्रदान करता हूं। जितने वैज्ञानिक उठकर खड़े होकर कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब मिथ्या है, सब बैंग है इत्यादि, उनको इतने जोर जोर से चिल्लाने की शक्ति कहां से मिलती है? एक हफ्ता फास्टिंग करे और उसके बाद देखे, बोल सकते हैं क्या? शक्ति आएगी? नहीं आएगी। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये सब कहां से आती है? सब भगवान की संपत्ति है। तो जब तक भगवान की संपत्ति हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर सकते और भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो धेनु का असुर ऐसी चेतना के प्रतिनिधित्व करते हैं कि किस तरह व्यक्ति भ्रम में पड़कर सोचता है कि ये संपत्ति मेरी है और ये समस्या भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बस उसका रूप और रंग बदल जाता है। भक्तों के संग में उसका रूप कुछ और हो जाता है, नाम कुछ और हो जाते हैं, पोस्ट कुछ और हो जाते हैं, लेकिन हृदय में भावना वही रहती है, मैं